खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। पालूस रसूल के वसीला से हम ग्रंथियों की कलीसिया में सीख रहे हैं कि वो कहता है कि हम किसी बात में ना किसी शख्स को, ना किसी खातून को, ना किसी बड़े को, ना किसी छोटे को, और ना ही गैर कौमों को, और ना ही आसमान के फरिश्तों को क्या देते हैं, मौका देते हैं कि वो ये कहें कि पालूस की खिदमत क्या है, बेकार है, पालूस का जीना बेफायदा है, या पालूस का तौर तरीका गलत है। सो पालूस रसूल जब कहता है हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, कोई उंगली ना उठाए, कोई अगर उंगली उठाए तो उसे वो जवाब देता है कि हम किस तरह खिदमत करते हैं। तो जब वो चौथी आयत में कहता है बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर एक बात से अपनी खूबी जाहर करते हैं। हम मसीहियों को पालूस रसूल एक ऐसा जबरदस्त नमूना खुदा की तरफ से मिला है जिस पर हम जिंदगी बसर कर सकते हैं। पालूस रसूल इसीलिए बड़े फख्र के साथ फिलिपियों के खत में, बड़े फख्र के साथ करंथियों के खत में ये बात कहता है जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं तुम मेरी मानद बनो, मुझसे सीखो जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझसे सुनी, मुझ में हैं, उसके मुआफिक चलो। सो पालूस रसूल जब कहता है कलामे खुदा के मेरी मानद बनो तो उसका हरगिज मतलब नहीं कि उसके मानद यानी कि जैसा वो है वैसा बोलना या उसकी नकल करना शुरू कर दो, नहीं, ईमान में, करदार में और मसीही जिंदगी में उसकी मानद बनो। सो पालूस रसूल कहता है बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात में अपनी खूबी जाहिर करते हैं। और खूबियां क्या हैं, बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है कि एक मसीही ईमानदार में कैसी खूबियां होनी चाहिए। ये खूबियां हम अपने आप से पैदा नहीं कर सकते, जैसे दरख्त अगर वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल हो, उसकी जड़ें जमीन के नीचे ना जाएं, वो फल पैदा कर नहीं सकता। बाजारों में हमें बहुत से आर्टिफिशियल यानी के नकली पौधे मिलते हैं जो दिखने को असली लेकिन उनकी जड़ नहीं है, उन पर फल भी नजर आएगा लेकिन वो असली फल नहीं है। वैसे ही जैसे वो पौधा बगैर जड़ के फल नहीं ला सकता, हम अपने आप से ये खूबियां पैदा नहीं कर सकते जब तक हम खुदावंद में कायम या उसमें मजबूत नहीं होंगे। जबूर 37 उसकी 4 आयत जो मुझे अपने दिल से याद है, जो मैंने बहुत देर पहले खुदा के कलाम में से पढ़ी थी कि खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। लफ्ज मसरूर का है गुंद जाना, जुड़ जाना, या जैसे कह सकते हैं कि कायम होना। और उसी बात को खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाप में क्या कहा था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है और तुम मेरी डालियां हो, जो डाली मुझ में कायम रहेगी वो क्या लाएगी, फल लाएगी। हमारी खूबी, पालूस की खूबी, उसकी खिदमत की खूबी किस तरह जाहिर हुई, वो मसीह से जुड़ा हुआ था, मसीह से वो ऐसे पवस्त था जैसे बहुत दफा कभी गुंजल पड़ जाते हैं तो गुंजल निकालना मुश्किल होते हैं, जैसे बहुत दफा जिसे कहते हैं कि पेंद करते हैं, अगर मरूद और सेब की पेंद करें तो वो क्या लाते हैं, दो किस्म का फल लाते हैं, होता है ना जी ऐसा, ये कुदरती निजाम है, दो पौधों की पेंद कर दें तो दो किस्म के फल आते हैं। हमारी बेफल जिंदगी में जब हम खुदा के उस फजल के बगीचे में लगाए जाते हैं तो हमारी टूटी हुई जिंदगियों से खूबी और फल जाहर होता है। और वो फल कौन सा है, यहां पर पालूस रसूल कहता है अपनी जिंदगी में कि हम अपनी खूबी किस तरह जाहर करते हैं, बड़े सब्र से, ये सब्र सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की तरफ से लग सकता है इंसान की ज़िंदगी में, उसके अलावा इंसान बेसब्रा है। इंसान में जो फितरत पाई जाती है वो सब्र कर ही नहीं सकती। बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतजाज से, तंगी से, यानी कि अपनी ज़िंदगी में सब्र करते हैं। मुसीबत में हों तो हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, ज़रूरतमंद हों, तंगी में हों, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से। याद है पालूस के खिलाफ हंगामे हुए थे, जब पालूस और सलास ने खिदमत कर रहे थे और एक जादूगर की वो लड़की जो उसकी गुलाम थी, जो क्या कर रही थी, जिसमें बदरू थी और लोगों का वो हाल बयान करती थी, हाल बयान करती थी और कहती थी कि तुम्हें ये तकलीफ है, तुम्हारा ये हाल है, तुम्हें ये मुश्किल है। और वो क्या करती थी, उस जादूगर के लिए क्या करती थी, पैसे कमाती थी। तो पालूस को वो बदरू तंग करती थी, वो जानती थी कि पालूस रसूल कौन है, वो खुदा का बंदा है। तो वो पीछे उसके चलाकर कहती थी, ये खुदा का बंदा है, ये खुदा का बंदा है। तो पालूस को आखिर को गुस्सा आया और उसने क्या किया, उस बदरू को झिड़का और वो भाग गई। और उस बंदे का क्या हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसका कारोबार रुक गया। तो उसके खिलाफ क्या हुआ, हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि ये यहां पर आकर गलत तालीम देता है, क्योंकि उस बंदे का कारोबार खराब हो गया था। तो पालूस को जेल खाना में डाल दिया। सो पालूस रसूल कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, पालूस रसूल का काम क्या था, खैमा दोजी का, वो खैमे बनाता था, वो खिदमत भी करता था, जहां कहीं जाता था काम करता था, मेहनत मुशक्कर करता था और खुदावंद के नाम का प्रचार करता था। सो पालूस रसूल मुसीबत उठाने में, तंगी में, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से और मेहनत करने से। बहुत दफा लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, जब आप वापस जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, मैं उनको बताता हूं, मैं रंग भी करता हूं, मैं बिजली का काम भी करता हूं, कीड़े मकोड़े जो मारते हैं वो दवाई भी छिड़कता हूं, अगर किसी की पौधे खराब हों तो उनकी क्यारी भी करता हूं, अगर ईंटें उठानी हो तो वो भी उठाता हूं। बहुत दफा जब हमारे नाम के साथ खादम का नाम लग जाता है तो हम कहते हैं कि हम बड़ी कुर्सी पर बैठ कर सिर्फ कहें, मुझे जी अच्छे नाम से पुकारो, मैं अपने फेल के बारे में नहीं बताना चाहता। सो पालूस रसूल मेहनतों से वो मेहनत करता था, मेहनत मुशक्कत करता था, ताकि कोई ये ना कहे कि पालूस रसूल तू चंदों पर तो नहीं पड़ रहा। सो पालूस रसूल मेहनतों से, बेदारी में, यानी कि जाग कर, वो दिन रात तो मेहनत करता था, वो जागता भी था, बेदारी की हालत में फाकों से भूखा भी रहता था, पाकीजगी से वो पाकीजगी की जिंदगी गुजारता था, इल्म से वाकफियत रखता था, उसे वो इल्म हासिल था जिसका इल्म बनाए आलम से पेशतर था कि खुदा अपने बेटे को भेजेगा। तहम्बल से वो तहम्बल करने वाला शख्स था, मेहरबानी से, रूहुल कुद्दस से, बेरिया मोहब्बत से, ये उसमें खूबियों का फल था, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, रासबाजी के हथियारों के वसीला से, जो दाएं और बाएं हैं। हमें अपने आप को लेस करना है सूरमा होते हुए, सूरमा उसे कहते हैं जो सिपाही होता है, जैसे रोमी हुकूमत के जंग जू होते थे उनके लिए लफ्ज़, हमारे दौर में सिपाही, आर्मी के लिए फौजी, और उस दौर में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था जंग जू, जो तलवारबाज थे, नेज़ाबाज थे, वो जानते थे कि किस तरह लड़ना है। हमें मसीही जंग जू कहा गया है और पालूस रसूल कहता है हमें खुदा के हथियारों से लेस होना है, हमें खुदा के हथियारों से मामूर होना है। सो इस तमाम हिस्से में पालूस रसूल अपनी खूबियां बताता है और वो खूबियां उसने अपने आप से पैदा नहीं की, क्योंकि एक दौर था पालूस रसूल अपनी खूबियों पर फख्र करता था और उसने आखिर को ये बात कही, कि मेरी रासबाजी के काम, मेरी खूबियां, मेरी नेकियां, मेरी वो तमाम अच्छाइयां क्या हैं? कूड़े क्रिकेट की मानद हैं। नहीं यकीन? आपके चेहरे से मालूम लगता है कि आपको यकीन नहीं। फिलिपियों तीन बाब का आप जब मतालिया करते हैं तो पालूस रसूल कहता है कि मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए, मसीह की खूबी को हासिल करने के लिए, कि मसीह की मानद उसके नक्शे कदम पर चले, कि मसीह जैसी मोहब्बत, मसीह जैसा रवैया, मसीह जैसी वो जिंदगी, के अपने बाप की मर्जी पूरी करे, उसने ये कहा। जब हम सारी आयात को देखते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ सातवीं आयत से पढ़ूंगा आपके लिए। बल्कि जितनी चीजें मेरे नफा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातर नुकसान समझ लिया। बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं। उन तमाम चीजों को वो क्या बयान करता है? पीछे वो अपनी हालत बयान करता है कि उसमें कौन कौन सी खूबी थी। खूबी के लिहाज से आठवें दिन उसका खत्मा हुआ था। आठवें दिन उसका क्या हुआ था? खत्मा हुआ था। उसने शरीयत को पूरा किया था, उसके माँ बाप ने। वो इसराइल की कौम और बनियामीन के कबीले का था। अबरानियों का अबरानी, शरीयत के अतबार से फरीसी, जोश के अतबार से कलीसिया का सताने वाला, और शरीयत की रासबाजी के अतबार से बेऐब। ये उसकी खूबियां थी। इन तमाम खूबियों को उसने क्या समझा? कूड़ा, बेकार, बेफायदा। क्यों समझा उसने? आगे देखें। ताकि मसीह को हासिल करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और खासकर मसीह को हासिल करने के लिए दुनिया की चीजों को जो के पानी है वो क्या है? कूड़े की मानत है। और कहता है, और उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस रासबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रासबाजी के साथ जो मसीह में ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, ईमान से मिलती है। ये रासबाजी, ये खूबी हम सबको ईमान से मिलती है। सो पालूस रसूल कहता है, खुदा के रासबाजी के हथियारों को दाएं बाएं बांधे। पुराने अहदनामा में जब ईमानदारों को देखते हैं तो वो अपने बच्चों के, फरीसियों को, रबियों को, काहिनों को देखते हैं तो वो अपने माथे पर तवीज बांधते थे, अपने हाथों पर, दाएं और बाएं दौलों पर वो तवीज बांधते थे, अपने दिल के साथ वो खुदा का कलाम लगा के रखते थे, और उस तवीज़ों में वो क्या डालते थे? खुदा का कलाम डालते थे, ताकि उनको याद रहे कि उनका सोचना खुदा के कलाम के मुताबिक हो, उनके हाथ बेईमानी के लिए, बदकारी के लिए ना भड़ें। सो पालूस रसूल उसी सोच को नए अहदनामा में इस्तेमाल करता है रूमी सिपाहियों के लिहाज से। क्या करता है? खुदा की रासबाजी के हथियार बांधो। हमें खुदा की रासबाजी के हथियार बांधने हैं, और दुआ उसमें सबसे कुदरत वाला हथियार है। आज मैं ये नहीं कहता, कलाम ये नहीं कहता कि आप तलवारबाजी सीखो, नेजाबाजी सीखो। हम रूहानी जंग लड़ने वाले ज्यू, रूहानी जंग ज्यू हैं। हमें दुआ करनी आनी चाहिए, दुआ में हिम्मत ना हारें। हमें खुदा में इत्मीनान और हौसले के साथ उस रखने में रखना जो फौजी जबानदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे घरों में रखना होता है, जिसे मोर्चा कहते हैं, कि रखने से रोशनी आती है और रोशनी बाहर जाती है। फौजी दौर में शहरों की फसील पर रखना बना हुआ होता था, जहां से वो आने जाने के सारे हिसाब किताब को रखते थे। हिजकील की किताब में, मुझे वो बाप भूल गया है, वहां पर खुदावन खुदा फरमाता है कि मैं तलाश कर रहा हूं कि कोई मेरे लिए रखने में खड़ा हो। वही सवाल जो यसाया नबी से किया था जब उसने खुदा का जलाल देखा, कौन मेरे लिए जाएगा? यसाया ने कहा, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। एलिया के पीछे जब एलिशा नबी आया जो एस मालदार का पहला पलोठा था, उसने क्या किया? अपने उस बैल को, अपने उस सारे सामान को छोड़ा और एलिया के पीछे हो लिया। खुदा ढूंढ रहा है कि कोई उसके लिए रखने में खड़ा हो, और वो रखना क्या है कि खुदावंद के उस मखसूस जगह को जो खुदावंद ने आपको दी है, उसमें खड़े होकर दुआ कर सकें। मेरी आसाल इस सारे मिशन ट्रिप में पाकिस्तान में यही दुआ है कि पाकिस्तान में बेदारी आए। और पिछले 10 साल पहले मुझे वो बात याद आई जो मैंने बचकाना तौर पर कही थी। एक गीत ने आया था मल का, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ये गीत की बदौलत मुझे याद है कि मैंने खुदा से कहा था कि मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, अगर तेरी मर्जी है तो पाकिस्तान की सरहदों के बाहर रूहों तक लेके जा ताकि तेरा कलाम सुनाया जाए। और मैंने अनजाने में ये बात कही थी, ना समझी में ये बात कही थी, अगर तेरी मर्जी है तो 10 करोड़ रूहों को जीतने का बोझ दे, 10 करोड़ रूहों का। और पिछले साल अमेरिका में आने से पहले यहाँ पर ये बात मुझे ये 12 रूल कुद्दस के वसीला से याद दिलाई गई थी कि याद है तूने वो बचकाना हालत में दुआ की थी, मैं वो खुदा हूँ जो पूरा कर सकता हूँ। सो खुदा रखने के लिए किसी ना किसी को ढूंढ रहा है। खुदा ढूंढ रहा है कि प्रस्तकार, दुआ गो, खुदा का कलाम और रासबाजी के हथियारों से हम पुर होकर उसकी हजूरी में खड़े हों। तो रासबाजी के हथियार हमारे पास वक्त कम है, हम आने वाले एक एक जुमले से, एक एक बयान से जो पालूस कहता है कि ये खूबियां हैं, हम इस पर महीनों सीख सकते हैं। सो पालूस कहता है, खुदा की कुदरत से, रासबाजी के हथियारों के वसीला से जो दाएं बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के नामी के वसीला से, गो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं। उसकी जिंदगी का तरीका कार ऐसा था कि लोग कहते हैं कि लगता है ये सत्या गया है, ये फरेबी है, ये क्या कर रहा है, इसे कोई किसी बात की तमा नहीं। वो कहता है अपने सारे काम काज से, चाल चलन से, मेहनतों से, मशक्कतों से, कैद खानों से, हर बात से लोगों के सामने वो क्या मालूम होता था? गुमराह करने वाला। गुमराह करने वाले मालूम होते हैं मगर सच्चे हैं, गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरे हुओं की मानद हैं मगर जीते हैं, मार खाने वालों की मानद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानद हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। किसी को जिंदगी के रूह से, किसी को जिंदगी के कलाम से, किसी को शफा से, किसी को इल्म से। याद है कि सारी रात पालूस रसूल कलाम सुनाता रहा और एक बंदा खिड़की में बैठा था, घर के रखने में बैठा था, और वो नीचे गिरा और मर गया, और पालूस रसूल ने नीचे जाकर उसके लिए दुआ की और फिर उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। कश्ती से नहीं था जी, नहीं जी, वो खिड़की से गिरा था जी। नादारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं, हम ईमानदार होते हुए बेशक दुनियावी तौर पर हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन आसमानी खुदा हमें कहता है कि मैंने तुम्हें आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। अगर ईमानदार उस पर तवक्कल करें, सादा तौर पर जैसे एलिया नबी को कहा था, जा और उस जगह पर जा, उस करीत के नाले पर जा, तो मैं तेरे लिए मुहैया करूंगा, तो खुदा ने कौओं को भेजा उसे सैर करने के लिए। तो खुदा, अगर वो खुदा उस वक्त ऐसा कर सकता है, आज भी कर सकता है। इसलिए हमें अपनी हर खूबी जो खुदा की तरफ से आती है उसे जाहिर करने की ज़रूरत है। स्वयं खुदावंद अपने खुदा के हजूर चुके हैं और खुदा से कहें कि खुदा बाप, अगर आप आज उसकी आवाज़ को सुने तो उसके आवाज़ से अपने दिलों को सख्त ना करें, उससे मांगना शुरू करें, उससे खास कर कहें कि खुदा बाप मुझे बता मेरी खिदमत, मेरा तोहफा, मेरी नेमत क्या है कि मैं पासबान बनूँ, कि मैं मुबशर बनूँ, कि मैं इंतज़ामिया बनूँ, कि मैं डीकन बनूँ, कि मैं एल्डर बनूँ, कि मैं रहनुमाई करने वाली संडे स्कूल टीचर बनूँ। खुदावंद खुदा मेरी खूबी जो तूने मुझ में रखी है उसे मुझ पर उजागर कर। हम सब दुआ कर सकते हैं, सब अपने लबों को खोलें और कहें कि खुदा बाप अगर तू रखने के लिए तलाश कर रहा है तो खुदावन मुझे बता कि मैं किस रखने में खड़ा हूँ, मेरे लिए तेरा क्या हुक्म है, मैं कैसे खुदाऊँ खुदा इस ज़मीन पर तेरी खूबी को जाहिर करने का वसीला बनूँ, और मेरी ज़िंदगी जो आर्जी है, जो धुंध की मानद है कि अभी नजर आई और अभी गायब हो गई, उस ज़िंदगी में खुदावन तू क्या चाहता है कि ज़मीन पर तेरे नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल हूँ। लश्करों के रब तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावन खुदा, एक एक नौजवान के लिए खुदावन तेरी बरकत, तेरा हौसला, तेरी कुदरत, एक एक खुदावन खुदा बुजुर्ग के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावन, अपने लिए तेरी रहनुमाई चाहता हूँ खुदावन, के हर रोज़ तेरी आवाज़ को खुदावन खुदा सुनकर तेरे ऐन मुताबिक खुदावन खुदा ज़िंदगी गुजारने का खुदावन खुदा काबिल ठहरूँ। लश्करों के रब तमाम बहनों के लिए खुदावन जो पढ़ाई के मैदान में, खुदावन इन पर भी जाहिर कर कि ये भी आज के दौर की आस्तर, रूत, मरियम, अलिशबा और परसिकला और दूसरे खुदाओं खुदा लोगों की तरह खुदाओं खुदा खिदमत गुजारी का काम करने का खुदाओं खुदा वसीला ठहरें, ताकि खुदावन जिंदगियों में तेरा मकसद पूरा हो और खुदावन तेरे फजल और तेरे कलाम और तेरी कलीसिया से खुदावंद दुनिया में इनकलाब आए, और खुदावन मुल्क पाकिस्तान में बेदारी चाहते हैं, उन 10 करोड़ रूहों तक खुदावन अगर तेरी मर्जी है तो खुदावंद कसरत से खुदावन लेकर जा, और खुदावन खुदा अपने मकसद को पूरा कर। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।